McKenny?
हरिबोल श्री राधा गोकुलानंद की जय। क्लास कैसे चल रहा है दोपहर का? अच्छा है, आप सब आते हैं? थैंक यू। हाँ नहीं, फिर भी सेवा तो होना चाहिए बीच बीच में, लेकिन रेगुलर आना चाहिए। प्रश्न उत्तर करना है अभी? कैसे करना है? कौन सा विषय? दशमृत। कौन से विषय पर क्लास? एक सुझाव, उपदेश अमृत। आभारी कैसे होना? और कोई बात? ब्रह्मचारी लाइफ मतलब सुखी लाइफ। अगर सुखी लाइफ, सुखी जीवन नहीं है तो फिर कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मचारी आश्रम में कोई तकलीफ नहीं है, ये मतलब नहीं। लेकिन ये सब होते हुए ये जीवन आनंद का है। गृहस्थ आश्रम में तकलीफ है लेकिन बहुत ज्यादा है। सुख, भौतिक सुख थोड़ा बहुत है आजकल, वो भी नहीं। ब्रह्मचारी आश्रम में थोड़ी बहुत तपस्या है, ज्यादा नहीं, इसलिए सुखी जीवन। अच्छा ब्रह्मचारी वो है जो हमेशा सुखी रहता है और दिखाई पड़ता है, वो अच्छा ब्रह्मचारी। हमेशा अगर हम उदास रहेंगे तो फिर कुछ तो गड़बड़ है कहीं तो। भक्त मतलब सुखी, और ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचारी मतलब और भी सुखी। ब्रह्मचारी भक्त और भी सुखी, क्योंकि ये पद्धति ही ऐसी है भक्ति की। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से खुद ब खुद आनंद मिल जाता है। एक इस्कॉन के भक्त थे, सन्यासी, उन्होंने कई साल पहले एक किताब लिखा था अंग्रेजी में, द जॉय ऑफ नो सेक्स। मतलब मैथुन नहीं करने का आनंद, इसका एक किताब लिखा था उन्होंने। क्योंकि उस समय एक बहुत प्रसिद्ध किताब बाहर था जगत में, कर्मी दुनिया में, जॉय ऑफ सेक्स, मतलब सेक्स का आनंद। इसके ऊपर एक बहुत प्रसिद्ध किताब था, बहुत लाखों लाखों प्रतियां उसकी बिकी हुई थी। भक्त लोग जहाँ भी जाते थे पुस्तक वितरण करने के लिए ये किताब देखते थे, जॉय ऑफ सेक्स, जॉय ऑफ सेक्स। भौतिक जगत में लोगों को सुख की कल्पना यही है, सुख मतलब मैथुन जीवन, यही उनकी कल्पना है। क्योंकि ये वास्तव में भौतिक जगत में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा भोग है, इससे बढ़कर कोई भोग नहीं है भौतिक जगत में। इसलिए लोग इसी को सब कुछ मान बैठते हैं। प्रभुपाद कहते थे ये मैथुन आगार है। मैथुन आगार मतलब एक ऐसा जगह है जहाँ सब लोग बंधे हुए हैं केवल इस एक वजह से, जो व्यक्ति इस एक चीज को पार कर पाएगा वो बेड़ा पार कर जाएगा। जो व्यक्ति पूरी तरह से काम वासना से मुक्त हो जाता है, कामुक जीवन से मुक्त हो जाता है, उसको परमहंस कहलाता है। तो ब्रह्मचारी जीवन है परमहंस स्तर की प्राप्ति के लिए तैयारी। हो सकता है कि हमारा मन कभी कभी विचलित होता है काम वासनाओं से, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई उदास होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ब्रह्मचारी वो होता है जो अपने मन के कठिनाई के बावजूद अपने सेवा में साधना में उत्साह कम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि अच्छे ब्रह्मचारियों के मन में कभी गलत विचार नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु जब ऐसे विचार आ भी जाते हैं तो जो अच्छे ब्रह्मचारी भक्त होते हैं वो ऐसे विचारों से या ऐसे कार्यों से या दृश्यों से या कुछ भी इनसे वो अपने भक्ति के सेवा के उत्साह को कम नहीं करता है। और क्योंकि वो ऐसे करते जाता है तो धीरे धीरे से वो प्रवृत्ति के पार हो जाता है, जो भोग प्रवृत्ति होती है उसके पार वो चले जा सकता है। तो पहली बात है कि भौतिक जगत में लोग क्योंकि इसी को सब कुछ समझते हैं और फिर सोचते हैं कि इसके बिना फिर क्या जीवन में है ही क्या। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सोचता है कि ठीक है, ये भूल जाओ कि भोग करने से उसका दुष्परिणाम क्या होगा, इस बात को एक क्षण के लिए भूल जाओ। अगर हम यही देखेंगे कि कोई भोग करे या नहीं करे वो तो बूढ़ा होने वाला है, वो तो बीमार होने वाला है, वो तो मरने वाला है, तो जब ये सब चीजें हैं तो वो कैसे ऐसी परिस्थिति में मैथुन जीवन को कर पाएगा। 80 साल का बूढ़ा कुछ कर सकता है? मृत्यु के शैया में लेटे हुआ आदमी कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। जब हम एकदम बीमार अवस्था में होते हैं और इतना कष्ट हो रहा है, कुछ शरीर दर्द कर रहा है, पेट में बहुत दर्द है, सर में बहुत दर्द है, शरीर में बहुत तकलीफ हो रही है, उस समय काम वासना आता है मन में? उस समय तो कोई विचार नहीं आता है, उस समय केवल एक ही विचार रहता है, ये दर्द कैसे खत्म हो जाए, है ना? तो हम सोच सकते हैं कि उस समय जब शरीर इंद्रियां सब कमजोर हो जाती है और उस समय व्यक्ति सोचने लगता है कि हाँ, ये कामुक जीवन के अलावा भी और एक जीवन कुछ है, यही सब कुछ नहीं है, मेरा दर्द खत्म हो जाए बस, मेरे को काम नहीं चाहिए, कामुक जीवन नहीं चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जब आपको बीमारी होती है, ऐसे कष्ट होता है, वो कष्ट को कभी भूलना नहीं, कि जो कष्ट का अनुभव किया था जब बहुत बीमारी थी या कोई निकट के व्यक्ति गुजर गए, हमको बहुत दुख हुआ, ऐसे परिस्थितियों को कभी भी भूलना नहीं। क्यों नहीं? ताकि हम बार बार याद रखेंगे कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, दुख का आलय। जब कोई दुख के परिस्थिति में रहता है तब वो दुख इतना प्रभावशाली रहता है कि अन्य कामों की इच्छाओं को वो खत्म कर देता है। फिर हम याद भी रख सकते हैं कि ऐसे भौतिक जगत का दुख है, लेकिन हमको होशियार रहना चाहिए क्योंकि अलग अलग दुखद परिस्थितियों में भी काम वासना कभी कभी इतनी प्रभाव शक्तिशाली होती है कि फिर से ऊपर आके आदमी को प्रभावित करती है। बिल्वा मंगल ठाकुर की कहानी आप सबने सुना है, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई अच्छे ब्राह्मण परिवार के थे, सुसंस्कृत सुशिक्षित, और पिताजी की मृत्यु होने के बाद श्राद्ध हो रहा था और उस समय उनको याद आया कि मुझे चिंतामणि के पास जाना है। तो घर में इतने सारे लोग थे, सब रिश्तेदार आए थे, सब लोग आए थे, फिर भी उसने सोचा नहीं हमको छोड़ के जाना चाहिए। देखो कितना तीव्र समाज के दृष्टि से उसका तिरस्कार होने वाला था, लेकिन उसने सोचा कोई परवाह नहीं, समाज हमको कुछ भी बोले, हमको जाना ही जाना है। पत्नी ने बहुत कोशिश किया, माता ने बहुत कोशिश किया बोलकर, कम से कम समाज की तो सोचो कि कितने सब लोग आए हैं और सबको तुमने बुलाया है और भी श्राद्ध करने के बजाय तुम चले जा रहे हो, ऐसे कितना बदनामी होगा, लोग तुम्हारे बारे में, हम सब के बारे में कितना बुरा बोलेंगे। लेकिन कुछ सुनने की तैयारी में नहीं था इतना दुख होने के बाद भी, और फिर इतना सारा कष्ट था, बारिश में भीग कर, ठंडी हवा, और फिर वो नदी को तैर के गए जहाँ की बाढ़ था, पानी में लहरें बहुत तेजी से जा रही थी नदी में, नदी का पानी ठंडा, तूफान, हवा, ये सब होते हुए किसी न किसी तरह से वो तैर के गए, और वो भी कोई नौका नहीं था। उसने सोचा है कि यहाँ पे एक झाड़ पड़ा है, पेड़ पड़ा हुआ है, वो पेड़ को पकड़ के चले जाओ, लेकिन वो था एक शव, मरे हुए आदमी का शरीर था, उसको पकड़ के वो नदी पार करके चला गया। और इतना सब कष्ट अब तक सहन किया और भी आगे उत्साह कम नहीं हुआ। और फिर वो दरवाजा खटखटाया तो को किसी ने खोला नहीं, क्योंकि अंदर सुनाई नहीं दे रहा था, इतना जोर बाहर से तूफान है। तो फिर सोचा डायरेक्ट मुझे अभी खिड़की तक पहुंचना चाहिए, खिड़की चढ़ने लगा ऊपर दीवार के, सोचा कि ये कोई लता है, लता पकड़कर चढ़ने लगा, लेकिन वो क्या था, सांप था। और किसी ने किसी तरह उस कमरे के अंदर जाके खटाक से गिर पड़ा। तब वो चिंतामणि नाम के महिला थी, उन्होंने कहा कि इतना ही उत्साह अगर मुझे प्राप्त करने के था, अगर वो भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इतना उत्साह होता तो आज तक तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया होता। ये घटना से न केवल बिल्वा मंगल ठाकुर का जीवन बदल गया, लेकिन वो चिंतामणि का जीवन भी बदल गया। ये बिल्वा मंगल ठाकुर ने ये सुना और सोचा कि अरे ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, और एक अत्यंत विरक्ति की भावना उत्पन्न हुई के मन में, और वो सब कुछ छोड़ के चले गए। और ये विरक्ति को देखकर चिंतामणि के मन में भी विरक्ति हो गई, वो भी सब छोड़ के चले गए। ये सब विशेष घटनाएं हैं, भगवान की योजना से होती है, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है। और इतना विरक्ति होने के बाद भी अब जानते हैं दूसरी बार क्या हुआ बिल्वा मंगल ठाकुर को, ना एक ब्राह्मणी के पीछे गया। ब्राह्मणी जब भिक्षा मांगने के लिए गया तो देखा कि ब्राह्मणी बहुत दिखने में सुंदर है, तो उसके पीछे 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 जा रहा था, तो ब्राह्मणी को अच्छा नहीं लगा, तो वो घर में गई, फिर भी घर में आया तो ब्राह्मण के वो ब्राह्मण था वहाँ, उस महिला के पति को समझ गया कि ये क्या कर रहा है, क्या चाहिए। तो बोला नहीं मैं तुम्हारे पत्नी से आकर्षित हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। तो सोचा ये भिक्षुक है, साधु है, तो मैं इनकार नहीं कर सकता। तो उसने अपने पत्नी को बुलाया कि मैं क्या सेवा कर सकते हूँ। तो फिर बिल्वा मंगल ठाकुर के मन में बहुत पश्चाताप हुआ, ने कहा वो महिला से कहा कि आपके दो जो बाल को बांधने वाले पिन होते हैं वो मुझे दे दो। और वो जो लिया और अपने आँख निकाल दिए। तो बोली ये आँख सब समस्या का कारण है, है ना, आँख इधर उधर देख के सब करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपचायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते। तो सब कुछ ध्यायतो विषयान पुंस, इंद्रिय विषयों के ऊपर ध्यान करने से सारी समस्याओं की शुरुआत होती है। तो चिंतन मनन करना है तो फिर ये तकलीफ को बुलावा देना है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कष्ट या दुख होने के बाद भी ये काम वासना इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति इसका प्रभाव में पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हम देखते अनुभव करते हैं। लेकिन ये दुख जब बहुत ज्यादा होता है, बहुत तीव्र होता है, जैसे कोई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इत्यादि, तो उस समय जो हमको एक प्रकार की भोग से विरक्ति उत्पन्न होती है, उस विरक्ति को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस याद से कि ये भौतिक शरीर केवल दुखों का एक भंडार है और इसमें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और जितना ज्यादा मैं ये भोग करूंगा, बहु दुख भाज है, इसको केवल दुख ही दुख मिलेगा और इसका परिणाम भी बहुत बुरा होगा। हर एक भोग के लिए कोई एक प्रतिकार होता है, रिएक्शन आता है। इसलिए जो ब्रह्मचारी है, अगर वो इस मन के वेग को थोड़ा बहुत सहन कर ले अपनी कृष्ण भक्ति करते करते, उसको आगे चल के बहुत तकलीफों से राहत मिल सकती है। और इसका रहस्य ये है कि अपने मन को हमेशा कृष्ण और कृष्ण की सेवा में मग्न करके रखना है। ऐसा करेंगे तो माया से हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो चाहे हमारे मन में काम वासना आए या न आए, हमारे साधना सेवा का उत्साह पूरी तरह से बनाए रखना चाहिए। ऐसे हम बहुत तेजी से आगे प्रगति कर पाएंगे। प्रभुपाद को कई बार भक्त लोग ऐसे ही प्रश्न पूछा करते थे कि क्या करना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि खास करके कलयुग में सबका मन बहुत दूषित होता है। कोई ऐसे शुद्ध व्यक्ति को पाना आजकल बहुत मुश्किल है, किसी सात्विक व्यक्ति को भी पाना बहुत मुश्किल है, और उससे ज्यादा शुद्ध की बात तो दूर है। पुराने जमाने में तो लोग कम से कम बचपन से ऐसे एक वातावरण में पाले पोसे जाते थे जिसमें इंद्रिय विषय, इंद्रियों के विषय जो है इतने बलवान नहीं थे। लेकिन आजकल सब कुछ इतना स्थूल हो गया है, इतना नीच निम्न श्रेणी का हो गया है कि यहाँ पर एक अजामिल के बजाय, जो उस समय एक अजामिल हुआ करते थे, प्रभुपाद जैसे कहते हैं लाखों लाखों अजामिल यहाँ सड़कों पे घूमते हैं। हर एक नौजवान नवयुवती प्राय, एक नौजवान खास करके प्राय अजामिल के समान है। तो ये वातावरण में कोई शुद्ध होना ये बहुत मुश्किल है। ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर कोई सन्यासी का पतन हो, अपने सन्यास व्रत को छोड़ दे, तो शास्त्रों बताया है कि उसको तुरंत जाके गंगा और यमुना के संगम में, प्रयाग में जाके उसको प्राण त्यागना चाहिए। ऐसे लिखा है। तो एक बार एक भक्त थे, जब प्रभुपाद जी चल रहे थे, तो एक भक्त ने पूछा, जिसने कि सन्यास लिया था अभी अभी थोड़े कई महीने या साल पहले, उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद अगर एक सन्यासी को फिर से स्त्री संग करे तो फिर क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, स्त्री संग जगह पतन हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने तुरंत कहा, उसको तो आत्महत्या कर देना चाहिए, अपने आप को खत्म करना चाहिए। वो वानतासी है, वानतासी मतलब जो अपने ही उल्टी को फिर से खा ले। जो एक बार संन्यास व्रत धारण करके संसार को त्याग के फिर से उसी गंदे भोग में चले जाए, वो वानतासी है, ऐसे कहते। तो फिर ये भक्त पीछे पड़ गए और उसके बाद उन्होंने नहीं सुना कि प्रभुपाद ने कहा, ये तो कह दिया कि आत्महत्या करना चाहिए, लेकिन फिर बाद में कहा, लेकिन नहीं, भक्ति करते रहना चाहिए, चाहे पतन हो, ये कलयुग है, चाहे पतन हो या न हो, इसका मतलब नहीं कि कोशिश नहीं करना चाहिए पतन न होए इसके लिए, लेकिन अगर हमारे पूर्ण प्रयास के बावजूद किसी का पतन हो भी जाए तो भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बात जो है इस भक्त ने नहीं सुनी और उस दिन से वो भक्त गायब हो गए, किसी ने देखा ही नहीं वो भक्त को। सन्यासी थे प्रभुपाद के, बहुत ही प्रिय शिष्य थे प्रभुपाद के और बहुत ही प्रिय अन्य सारे भक्तों के लिए थे। जरूरी नहीं है कि उनका कोई पतन हुआ होगा, परंतु उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा और ऐसे उत्तर मिलने के बाद फिर वो गायब हो गए। सब भक्त लोग सोचे कि हो सकता है कि वास्तव में जैसे प्रभुपाद ने पहले भाग का उत्तर दिया था वैसे उन्होंने किया होगा। परंतु अन्य लोग जो उस समय थे वहां पर भक्त थे, वो बोलते थे कि उन्होंने दूसरा भाग नहीं सुना उत्तर का, कि प्रभुपाद ने कहा कि शास्त्रों में ऐसे लिखा है परंतु, वो परंतु के बाद जो प्रभुपाद ने कहा वो नहीं सुना उन्होंने। तब तक उतना सुनकर वो किसी तरह से पीछे रह गए। तो ये कलयुग है और कलयुग में वातावरण बहुत दूषित है, मन सबका दूषित है। तो अगर एक हमारे मन में कोई बुरा विचार आए, हम इतना उदास हो जाए, सोचे कि हमसे भक्ति नहीं होगा, तो फिर इससे काम नहीं चलेगा। हमको जानना चाहिए कि ऐसे दूषित वातावरण में हो सकता है हमारा मन कभी कभी विचलित हो जाए, परंतु हमको हमारे ब्रह्मचर्य के व्रत को जहां तक हो सके नहीं तोड़ना चाहिए और उत्साह नहीं कम करना चाहिए। ये हमारी सुरक्षा है। इसलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको सहन करना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्य स्थाम प्रतीक्षा स्वभावत, कि हमको तितिक्षवान रहना चाहिए। केवल शारीरिक चीजों के बारे में तितिक्षवान नहीं, जो इंद्रियों के वेग हैं उनके प्रति भी तितिक्षवान होना चाहिए। और ऐसा होने से हम मुक्ति के लिए योग्य हो जाते हैं। यम हीना व्यथियंते थे पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुख धीरम सम सुख दुख धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्वाय, अगर अमृत की अवस्था हमें प्राप्त करनी है, अमृत होना है, तो हमको इन चीजों को सहन करना चाहिए, उदास नहीं होना है। ये स्वाभाविक है ये सब विचारे आना, लेकिन जो हमारे लिए उचित होगा इसके बारे में हमको सावधान रहना चाहिए। जानबूझकर अपने आप को ऐसे परिस्थिति में नहीं डालना चाहिए, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारा मन और भी विचलित हो जाए, हमारे ब्रह्मचर्य के पालन के लिए और भी कठिनाई हो जाए। ऐसे कोई कार्य हमको नहीं करना चाहिए। है जो ब्रह्मचारी हमेशा रह सकेगा? कौन से इसमें पॉइंट है जिससे ये कोई व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचारी रह सकता है या नहीं रह सकता है? कौन से पॉइंट इसमें है जो कि इस बात को निश्चय करेंगे कि ये भक्त ब्रह्मचारी रह सकेगा कि नहीं रह सकेगा? कौन सी चीजें हैं, एक एक करके बताइए। सुबह का साधना जो अच्छा करता है, ठीक है, सुबह को जल्दी उठना, साधना अच्छा स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, एक पॉइंट। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा वो निश्चित रूप से नहीं रह पाएगा और फिर भक्ति में भी उसकी रुचि कम हो जाएगी। और कौन से पॉइंट है जो इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं कि ये भक्त ब्रह्मचारी रह सकेगा कि नहीं रह सकेगा? पूरी तरह से अपने आप को सेवा में मग्न रखना। ब्रह्मचारी वो है जो कभी समय व्यर्थ नहीं गवाता है, टाइम वेस्ट नहीं करता है, इधर उधर टाइम पास नहीं करता है, इधर प्रजल्प करो उधर प्रजल्प करो इधर इधर ऐसा कुछ आलसी बनो ऐसा नहीं करता है। जो ब्रह्मचारी आलसी है या टाइम पास करने का आदि है वो ब्रह्मचारी ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये इंद्रियों के विषय बहुत बलवान है, बाहर की माया बहुत शक्तिशाली है। हाँ, जो इंद्रिय व्यक्ति के विचारों को मन पे ही सहन करना, उसका शमन करना, भले वो कठिनाई हो कभी न हो, लेकिन कौन से वो ऐसे कर पाएगा कि नहीं, इसके लिए कौन से और पॉइंट्स है। ये दो पॉइंट हो गए, एक है साधना का, और साधना वो जो सुबह सुबह से हो, और दूसरी बात कि हमारा पूरी तरह से सेवा में हमें हमारा समय होना चाहिए। गुरु और कृष्ण के प्रति समर्पित मतलब क्या, उनके आज्ञा का पालन करना, मतलब एक आज्ञाकारी भक्त होना। जो ब्रह्मचारी आज्ञाकारी नहीं है वो कभी ब्रह्मचारी हमेशा के लिए रहना उसके लिए मुश्किल होगा। आज्ञाकारी मतलब क्या है, जो शरणागत है। आज्ञाकारी मतलब जो शरणागत है, जो उसको बोला जाए वो करे, है ना। आज्ञाकारी मतलब जो उसको बोला जाए वो करे। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है, अर्थात स्वतंत्र भावना को त्याग करना। जितना हमारी भावना स्वतंत्र भावना रहेगी उतना कठिन होगा। और भक्तों के साथ अच्छे संबंध बहुत अच्छा, अगर कोई वैष्णव अपराध ज्यादा कर रहा है तो वो भी नहीं टिक पाएगा। बाकी उसकी साधना कितनी भी अच्छी हो, पूरी तरह से सुबह से रात तक सेवा में लगा हो, लेकिन उसका व्यवहार भक्तों के साथ अगर ठीक नहीं है, अपराध करता है अन्यों के साथ, तो उसको भी टिकना लंबे समय के लिए कठिन हो जाएगा। क्योंकि भगवान की कृपा उसके ऊपर भगवान खींच लेंगे वापस। हम अगर इंद्रियों को वश में कर पा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हमारा इसमें कोई श्रेय है, हमारी को योग्यता है इसलिए हम इंद्रियों को वश में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल भगवान और वैष्णवों की, गुरु वैष्णव कृष्ण की कृपा से हो रहा है और कुछ नहीं। और जब हम शरणागत होते हैं और सबके साथ हम बड़े प्रेम से आदर से व्यवहार करते हैं तो ये कृपा हमको इस विषय के समुद्र से ऊपर उठाती है, ऊपर ऊपर ऊपर। लेकिन जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो कृपा के पात्र नहीं रहते, तो फिर छोड़ दिया जाता, ठरबा कर फिर से हम उन्हीं कार्यों में लग जाते हैं जो हम पहले करते थे। और क्या शास्त्र अध्ययन बहुत जरूरी ब्रह्मचारी के लिए, श्रवण करना और शास्त्रों का अध्ययन करना। अगर ब्रह्मचारी थोड़ा कुछ पढ़े नहीं सुने नहीं रोज, तो उसको भी अपने ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोज फिलोसफी भी सुनना चाहिए, रोज रोज दिमाग में ये ठोकर मार मार के को करना चाहिए, उसके बारे में रस भी होना चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए। हमारे शुद्धिकरण के लिए हमें पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद की किताबें बहुत ध्यान से पढ़ना। और क्या हो सकता है, कुछ बोल रहे थे ना। हाँ, किस कठिन परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए तो कैसे वो संभव होगा, वो क्या करेगा तो ये संभव होगा। ब्रह्मचारी को बहुत नम्र और सहनशील होना चाहिए, ऐसा ब्रह्मचारी टिकेगा। वो सहनशील नहीं होगा, नम्र नहीं होगा, बहुत गुस्सा करेगा, इसके इसके ऊपर चिल्लाएगा, करके गुस्सा में रहेगा। क्रोधी व्यक्ति है वो कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। कामात क्रोधो भी जायते, है ना, असंतुष्ट काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधात भवति सम्मोहा, फिर सम्मोह आ जाएगा, जो मोहित हो जाएगा व्यक्ति वो कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ज्यादा बहुत क्रोध की अवस्था में आना ये भी ठीक नहीं, इसलिए सहनशील और नम्र, अश्रद्धा, अश्रद्धा से भी लेकिन ये सब कहाँ से आता है? श्रद्धा या अश्रद्धा इन सब चीजों से आता है और संघ से। ब्रह्मचारी, अगला पॉइंट कि ब्रह्मचारी अपने संघ के बारे में बहुत सावधान रहता है। किससे वो संग कर रहा है, किस टाइप का संग, किस प्रकार का संग कर रहा है। भक्तों की वो वैष्णव भी हो लेकिन किस प्रकार का संग। अभी भी आते आते हम ट्रेन में पढ़ रहे थे प्रभुपाद का किताब, उसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग वो भी वैष्णव है। क्रिश्चियन और मुसलमान लोग वो भी वैष्णव है। क्यों है? क्योंकि वो भी तो भगवान के पास जाते हैं। गिव मी माय डेली ब्रेड, आज का मेरा दाल रोटी मुझे दे दो। तो प्रभुपाद कहते हैं उनका स्तर निम्न श्रेणी का है, अभी तक वो भक्ति के स्तर में आए नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के पास जा रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, इसलिए वो भी एक प्रकार के वैष्णव। इस जन्म में न हो, एक जन्म में वो तो ऊंचे वैष्णव बन जाएंगे। तो वैष्णव भी तरह तरह के होते हैं। तो ब्रह्मचारी जो रहना चाहता है वो उसके संग बहुत सावधानी से चुनेगा। जो छल कपट से दूर रहेगा, राजनीति के वातावरण से दूर रहेगा, प्रगल्भ के वातावरण से दूर रहेगा, और एक बात है कि पूर्व जन्म के संस्कार ये भी बहुत महत्व के, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाकी सब हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हमारे पूर्व जन्म के क्या संस्कार थे अब तो इसके बारे में हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं। किसके बहुत अच्छे संस्कार है पहले से, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना ज्यादा आसान हो जाता है, और जिसके पूर्व जन्म से संस्कार अच्छे नहीं है उसको जो हो सकता है थोड़ा कठिन हो जाए। लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है, नहीं है, उसे क्या कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसके बारे में तो हम बहुत सावधानी से काम कर सकते हैं। प्रार्थना की भावना होनी चाहिए, सेवा भाव, प्रार्थना का भाव। और एक चीज है जिसको कॉमन सेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। कॉमन सेंस मतलब क्या है? सामान्य बुद्धि। क्यों? सामान्य बुद्धि है कि ऐसा करने से मेरे ब्रह्मचर्य को तकलीफ होगी। सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है, सबको मालूम, लेकिन फिर भी मैं जाके ऐसा कुछ करता हूँ। एकांत स्थान में किसी एक माताजी के साथ बात नहीं करना चाहिए। सबको मालूम है, जो बात करता उसको भी मालूम है, लेकिन वो सावधान नहीं होता उसके बाद। केवल हमारा जो सामान्य बुद्धि होश ठिकाने में हम रखे हैं बस, ये करने से मेरे लिए खतरा है, ये करने से मेरे लिए अच्छा नहीं है, बस इसके बारे में उसको जान कर, इसको पहचान कर हम इसके ऊपर से कार्य करेंगे तो सब ठीक चलेगा। ब्रह्मचारी को सरल होना चाहिए, सरल जीवन। चरित्र में सरलता, रहन सहन में सरलता, व्यवहार में सरलता, व्यवहार में सरलता मतलब छल कपट नहीं, आगे कहना कुछ, पीछे कहना कुछ, ऐसा नहीं। सबके साथ बड़े प्रेम से व्यवहार करना, झगड़े की भावना से नहीं। रहन सहन में सरल मतलब कपड़े इत्यादि इत्यादि भी सरल। ब्रह्मचारी कोई फैशन कंपटीशन में भाग नहीं लेता है, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लेता है। ब्रह्मचारी किसी को आकर्षित करने के लिए कोशिश नहीं करता है। ब्रह्मचारी कभी इच्छा से अपनी ओर लोगों को का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश नहीं करता है। हर तरह से सरल जीवन में जो रहेगा उसके लिए ज्यादा आसान होगा ब्रह्मचारी हो रहने के लिए आजीवन। स्वच्छता बहुत जरूरी है। कोई ब्रह्मचारी स्वच्छ नहीं रहेगा इसका मतलब है वो तमोगुण में है। जो तमोगुण में है वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, क्योंकि ब्रह्मचारी मतलब सात्विक एक ये लक्षण है, ये सत्वगुण का लक्षण है ब्रह्मचर्य। तो सात्विक जीवन नहीं होगा तो ब्रह्मचारी का पालन संभव नहीं होगा। और शुचि या स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, ये सब शुचि या स्वच्छता के अंग है। जो अपने जगह को गंदा रखे, अपने कपड़ों को गंदा रखे, अपने शरीर को गंदा रखे, अपने वचनों को गंदा कर रखे, वचन भी हमारे शुद्ध होने चाहिए। ब्रह्मचारी को भी कभी इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। एक प्रभुपाद के शिष्य है, शिष्य ने वो दीक्षा तो नहीं दी उन्होंने, लेकिन प्रभुपाद को गुरु मानते थे वो उस समय अमेरिका में। और वो एक प्रसिद्ध खेल क्रीड़ा कर स्पोर्ट्स स्टार थे, वो खेल में काफी प्रसिद्ध थे। उनका नाम था पीटर बरवाश। वो अभी आजकल रिटायर हो गए स्पोर्ट्स से, लेकिन बाहर की दुनिया में बहुत जाने माने को बड़े बड़े कंपनियों में जाके वो लेक्चर वगैरह देते हैं और उनको सलाह देते हैं कंपनी कैसे ठीक से चलाना, कंसल्टेंट, बहुत लाखों लाखों रुपए उनको मिलते हैं। तो वो बता रहे थे कि प्रभुपाद ने, जब वो प्रभुपाद से पहले मिले तो प्रभुपाद ने पूछा कि तुम क्या करते हो, जब पता चले कि ये खेल करता है, क्रीड़ा खिलाड़ी है, हाँ खिलाड़ी, ये खिलाड़ी है। और वो जानते हैं कि खेल में खिलाड़ी लोग बहुत उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं ना, जब खेल चल रहा होता है, खेल की गर्मी होती है तो गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद ने उनको एक दो आदेश दिए कि आपको हमेशा जप करना है और दूसरी बात कभी जीवन में एक भी गाली नहीं देना है। तो बोल रहे मैं आज तक मैंने प्रभुपाद के आदेश का पालन सख्ती से किया है, उसके बाद मैंने एक बार भी गलत शब्द नहीं बोला, गाली नहीं बोला किसी को। इसलिए ब्रह्मचारी को भी चाहिए अपने वचनों को भी शुद्ध रखे, कभी गलत भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जो कि बाहर ब्रह्मचारी या भक्त बनने के पहले जो जीवन में भाषा जिस टाइप का यूज करते थे हम लोग, हम भक्त लोग, वैसे टाइप का भाषा नहीं यूज करना चाहिए। अरे तुरे करके नहीं बात करना है, फिर वो हम उसी टाइप के जीवन से फिर आकृष्ट हो जाएंगे। न केवल उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, लेकिन उस तरह की तरह से बात भी करना। ब्रह्मचारी सज्जन होना चाहिए। सज्जन मतलब समझते हैं ना, जेंटलमैन, भद्र होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। जब कैसे सबके साथ व्यवहार करना वो जाने है। प्रवचन में फिल्मों के गाने कोट करते हैं ऐसे आदत नहीं बनाना है इसको। अगर पॉइंट पॉइंट एक अच्छा उसमें से प्रचार के लिए हो सकता है, अगर बाहर हम प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों से हमको कुछ समझाना है और अच्छा एक पॉइंट उसमें से बैठ सकता है तो भी ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार ऐसे हम करते रहे। अगर उसको कोट करके हम कोई अच्छा कुछ हम पॉइंट बोल रहे हैं जिसके कि प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर तो फिर ठीक है। भागवतम क्लास में जहाँ तक हो सके ऐसे नहीं करें तो अच्छा है। भागवत क्लास के अंदर खास करके जो मंदिर में हो तो बाहर ठीक है, कभी कभी किया जाए। भक्त का प्रवचन हमने सुना था बंबई में, क्योंकि उस समय एक फिल्म था कभी खुशी कभी गम, तो फिर उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रवचन दिया कि कैसे ये जीवन में कभी खुशी कभी गम नहीं, बहुत कम खुशी है बहुत ज्यादा गम है। तो बाहर के लोगों के लिए ठीक है, वो उस टाइप वो यही सब देखते हैं। तो एक उन्होंने अच्छा पॉइंट पकड़ा उसका कि जो आप सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा सुख है, थोड़ा दुख है, ठीक है, लेकिन ये तो बहुत रेयर होना चाहिए। अगर करना भी पड़े और एक योग्य जो स्थिति है परिस्थिति है जो लोग सुन रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत एक बार किया बस। बहुत मैच्योर होना चाहिए व्यक्ति को ये सब करने के लिए, तो हर बार ऐसे आदत पड़ जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, फिर वही सब चीजें याद आती रहेगी। जो हम अगर देखते हैं और उसके उसके ऊपर हम कमेंट करते हैं वो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, रेयर होना चाहिए। अगर होना ही है तो बहुत रेयर। प्रश्न है किसी के? हंसी मजाक में पिक्चर के गाने गाते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल बंद करना चाहिए, ये तो बिल्कुल बहुत खराब है, ये तो ऐसा है तो फिर ब्रह्मचारी आश्रम में वातावरण पूरा बिगड़ जाएगा। हंसी मजाक के लिए भी स्थान है ब्रह्मचारी आश्रम में, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी को हमेशा बिल्कुल गंभीर होकर बैठना है, लेकिन हंसी मजाक किस प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, किस विषय में होना चाहिए, इन सब चीजों में रमण नहीं करना है हंसी मजाक में। ये तो बिल्कुल अगर हो भी रहा है तो इसको पूरी तरह से बंद करना है। होता है, होता है, कितना होता है, कितना होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है,
ज्यादा मेरे फिल्म प्रैक्टिस करते हैं।
ज्यादा भी परिचय किसका भी है, फिर भी ये विषय क्यों, मित्रता भी हो लेकिन क्यों ऐसे बातों को हमको करना चाहिए, फिर हमको हम क्या काम है इन फिल्मों से, सिनेमा से हम दूर जाना चाहते हैं, हम इस उस जगत से दूर जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जगत में हम जाना चाहते हैं।
कभी कभी वो याद आता है,
याद आता है तो बोलना थोड़ी पड़ता है उसको, याद भी आ जाए तो बोलना क्यों चाहिए उसको।
मैं
ऐसा नहीं करना, मन में विचार आए भी तो चुप, बाहर तो बाहर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खास करके ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर ऐसे सब बातें नहीं होना चाहिए, और दूसरे ब्रह्मचारी इसको सुने, कोई ऐसे बात हो रहा है तो तुरंत काट देना चाहिए उधर, इसके बारे में बहुत कड़क होना चाहिए, नहीं तो पानी में दूध मिलाते 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 फिर वो पानी हो जाता है, ऐसे फिर ब्रह्मचारी का जीवन भी ऐसे खत्म हो जाएगा। ब्रह्मचारी जीवन में मिलाते 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 देखा एक दिन वो है ही नहीं, फिर बाहर के संसार में चले जाएगा। ऐसे कई पुराने जो है वो राग के ऊपर आधारित है, जो बहुत अच्छे अच्छे राग हैं, वो राग के आधार पर हमारे इस्कॉन में भी कई ऐसे महामंत्र होते हैं, लेकिन खास करके अभी आजकल के जो ऐसे होते हैं सिनेमा की जाने और रेलवे स्टेशन में जाने कुछ सुना तो उसके ऊपर आपने वो महामंत्र की जरूरत नहीं, अगर ऐसा करने से आपको वो सब याद आए तो जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छे अच्छे धुन है। हम महामंत्र का कीर्तन करके हमको कृष्ण का स्मरण होना है, न कि और किसी चीज का, इसलिए बाहर की माया बहुत जबरदस्त है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हर एक भक्त को बहुत सावधान रहना चाहिए। जल्द भी नहीं, इधर उधर की बिना वजह के इधर की बातें उधर की बातें, ठीक है। और कुछ पिछले जन्म के संस्कार, मतलब कि पिछले जन्म में है अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे कोई कार्य किए होंगे जिसकी वजह से उसको यहाँ ब्रह्मचारी जीवन पालन करने के लिए थोड़ा आसान हो रहा है, तो उसको आसानी से वो कर पाएगा, आसानी से नहीं भी हो तो कम कष्ट होगा दूसरों की तुलना से। दूसरे लोग हैं जिन्होंने ऐसा जी, उनके संस्कार बुरे होंगे तो उनको ज्यादा तकलीफ कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन किसी का बुरा भी संस्कार क्यों ना हो, अगर वो अन्य चीजें अच्छी तरह से कर रहा है तो फिर बुरे संस्कारों को पार करके लांघ के वो जा सकता है। इसलिए हम बोले जो पिछले संस्कार वो क्या है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो क्योंकि वो तो बीत चुका, लेकिन अब जो हमारे हाथ में है, जो बाकी सारे जो पॉइंट हमने बताए वो तो हमारे हाथ में है, अगर वो सब हम ठीक से करेंगे तो फिर बुरे संस्कारों का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर उसको लांघ के जा सकते हैं। कुछ भी हो लेकिन भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, उतने उत्साह से हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी दुख सुख का अनुभव कर रहे हैं ज्यादा करके ये मन का वेग है, मन को कभी अच्छा लगता है मन को कभी बुरा लगता है, संकल्प विकल्प मना, तो इसके बारे में ज्यादा परवाह न करते हुए हमारे निहित कर्मों को, भक्ति के अंदर जो निहित कर्म है, हमारी साधना है, सेवा है, सब हमको बराबर करते रहना चाहिए। ठीक है, और अगर अगली बार ऐसे मन किसी बात से विचलित होता है तो एक बात याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, कि आपका अकेला का मन विचलित हो रहा है, सारे सारे जो बद्ध जीव है जगत में सबकी समस्या है ही है। तो ऐसा है, लेकिन ये भी नहीं सोचना चाहिए चलो सबका है तो इसको कोई सॉल्यूशन नहीं है, चलो उपाय नहीं, चलो बैठ जाओ, नहीं उपाय है, यही उपाय है कृष्ण भक्ति, यही बड़ा उपाय है। इसको बस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, बस यही हमारे लिए बहुत है। फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा आएगी, हमको इस चीज से उपार करा देंगे। हमने दवाई सही हाथ में पकड़ा है, अभी उसको लेते रहना चाहिए बस। हमने धीरज खो बैठे कि अरे इतना दिन दवाई लिया, दो साल भक्त हुए लेकिन अभी हम शुद्ध भक्त हुए नहीं, तो फिर वो नहीं चलेगा, उनको लेते रहना पड़ेगा दवाई। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर ब्रह्मचारी आश्रम की जय।
गायन्ति भक्तिभावेन हरे नामैव केवलम्, गायन्ति भक्तिभावेन हरे नामैव केवलम्, अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यतः, अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यतः, काचायं विस्मृतं रत्न हरे नामैव केवलम्, काचायं विस्मृतं रत्न हरे नामैव केवलम्, दियतां दियतां वचः, दियतां दियतां कर्णो दियतां नियतां वचः, जीयतां जीयतां नित्यं हरे नामैव केवलम्, जीयतां जीयतां नित्यं हरे नामैव केवलम्, तृणाकृत्य जगत सर्वं राजते सकल परम। तृणाकृत्य जगत सर्वं राजते सकल परम। चिदानन्दं मयं शुद्धं हरे नामैव केवलम्। चिदानन्दं मयं शुद्धं हरे नामैव केवलम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोकुलानन्द राधे, जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल। परम परो प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजित श्री चैतन्य कृपा भर भो विभो भारावहन्तारक वन्दो रूप सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपालक शास्त्र विचारण कनिपुण सधर्म संस्थापक लोकानां हितकारिण त्रिभुवने मान्यौ शरण्य करो राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्दे नमत्तालिको वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपालक श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा संविद्धान्वित पापोताप विकृतन तनुभृता गोविंद गानामृत आनन्दाम्बुधिवर्धन कनिपुण कैवल्य निस्तारक वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपालक त्यक्त्वातूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशकौ करुणा न कंथाश्रित गोपी भावर सामृताभिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ हंस सारस गणा कीर्णे मयूरा कुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने महर्निशं प्रभजत जीवार्थदौयौ मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको नाम गाननतिथि कालावतानी कृत निद्राहार विहार कादि विजित चात्यंत दीनौ चयो गुणस्मृते मधुरिमानन्देन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको तटे कलिन्दतनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्मादवसादशेषदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा कदा हरे गुणवरं भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको देव के चलल थे। हे नंद सुनो पुतह, गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वंदे